ओम शांति। सभी अपनी अपनी डायरी खोलेंगे। जिनके पास डायरी नहीं है वो पेन और पेपर ले लेंगे। क्लास का टॉपिक भोले की फौज सदा करेगी मौज। तीन बातें लिखनी हैं। दो मिनट के लिए सभी आंखें बंद करेंगे और जब से ब्रह्मा कुमार बने तब से लेकर अब तक ब्रह्मचर्य से संबंधित, प्यूरिटी से संबंधित ऐसी कौन सी तीन भूले हुई, दो मिनट आंख बंद करके पहले सोचेंगे, जो आज तक किसी को नहीं बताई, पहले उन तीन भूलों को स्मरण में लाएंगे। अगले दो मिनट और उसके बाद में जैसे बाबा को वो भूले बताई जा रही है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकती है, स्थूल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ब्रह्मचर्य अर्थात 21 बातों में पवित्रता, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन, तन, बुद्धि, संस्कार, धन, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, आदतें, भावनाएं, कल्पनाएं, स्मृतियां, स्वप्न, लिखना, सुनना, देखना, खाना, स्पर्श करना, ऐसी 21 बातें हैं। इन 21 में से किसी भी एक बात में यदि प्यूरिटी का उल्लंघन हुआ है तो आंखें बंद करेंगे दो मिनट के लिए और फिर वो तीन चीजें डायरी में लिख देंगे जैसे बाबा को हम सुना रहे हैं। स्टार्ट लिखेंगे। लिखना ही पश्चाताप है, लिखना ही प्रायश्चित है और लिखना ही जैसे कि उन भूलों से सदाकाल के लिए मुक्ति, इस भाव से लिखेंगे। ये स्थान महातीर्थ है, ये संगठन योगियों का है, सबके बीच में लिखी हुई बातें, सबके बीच में कबूल किया हुआ अपराध, सदा के लिए मुक्ति है। हर एक अपना लिखेंगे, किसी की डायरी में नहीं देखेंगे। जिनका हो गया है फिर से आंखें बंद करेंगे। सूक्ष्म वतन में मैं बाबा के सम्मुख हूं, अनुभव करेंगे और जो बातें लिखी अब वो बाबा को सुनाएंगे। और अनुभव करेंगे कि भगवान ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है और शक्ति दे रहा है कि अब ये भूल फिर कभी नहीं होगी। आँख खोलेंगे। ओम शांति। एक जंगल में एक योगी निरंतर तपस्या करता था। और युवा था, अकेला रहता था एक छोटी सी कुटिया में, संसार छोड़ चुका था, किसी से कोई संपर्क नहीं। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना ठंडे पानी से, तपस्या करना, बीच बीच में थोड़ा सा जलपान और कंदमूल खाना, शाम को फिर तपस्या करना और लगभग मौन किसी वीरान जंगल में जहां मनुष्यों का आवास तक नहीं, ऐसे स्थान पर बैठकर तपस्या में रत। एक दिन एक ऋषि कन्या वहां से गुजरती है और इस तपस्वी को देखती है। उसके मन में इच्छा होती है कि इसकी मैं सेवा करूं। और वो ये भी चाहती है कि इसकी तपस्या भी भंग ना हो, इसलिए वो छुप छुप के उसकी सेवा करती है। उसके पिता का आश्रम कहीं दूर था, जो कि ऋषि ही थे, तो ये रोज ऋषि कन्या वहां आती, उसका जो आसन है वहां पर फूल बिछाती, जब वो स्नान करने गया होता पानी रखती, परंतु अपने आप को हमेशा छुपा कर रखती और उसकी सेवा करती गुप्त रूप से, और वो तपस्वी अपनी तपस्या में मगन। एक दिन जब तपस्या कर रहा था तो उसे भी ऐसा लगा कि कोई है आसपास जो ये सब कर रहा है, परंतु इतना वैरागी था कि ये सब बातों में उसे जाना नहीं था कौन होगा क्या होगा। एक दिन जब तपस्या में मगन था और अचानक आंख खुली तो उसने देखा एक कन्या वहां फूल बिछा रही है, और उसने उस कन्या को देखा और उस कन्या ने उसको देखा। तपस्वी ने तुरंत आंखें बंद कर ली और तपस्या में मगन हो गया, और वो कन्या वहां से चली गई और उसके अंदर आत्मग्लानी हो गई, और उसे ऐसा लगा कि मैंने इस तपस्वी की तपस्या भंग कर दी, इसने मुझे देख लिया। पर उसे एक अंदर से खुशी भी हुई कि उसने मुझे देखा, क्योंकि यह भी इच्छा थी कि जिसकी मैं तपस्या इतनी सेवा कर रही हूं वो भी तो मुझे एक बार तो देखे। उसे खुशी भी हुई, परंतु आत्मग्लानी का भाव ज्यादा था और वो वहां से हमेशा के लिए चली गई, फिर कभी नहीं आई। तपस्वी अपनी तपस्या में फिर मगन हो गया। अब तो उसकी तपस्या और घनघोर हो गई। ये कहानी किसी शास्त्र में है। अब तक तो बीच बीच में उठता था, पर धीरे धीरे अब कंदमूल फल भी कम करने लगा, पानी भी कम करने लगा, उठना भी कम करने लगा, अधिक से अधिक समय तपस्या में। और जैसे हमेशा दिखाते हैं, जैसे ही पृथ्वी लोक पर कोई तपस्या करता है इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है उधर, वैसे ही उसका सिंहासन डोलने लगा। इनसिक्योरिटी, जैसे कोई मेरा ये कुर्सी छीन लेगा। तपस्या और भयंकर हो जाती है, सारी मिट्टी जमा हो जाती है ऊपर वो तपस्या में मगन, और फिर अंततः इंद्र आ जाता है कि आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की जो तपस्या तुमने की, सब कुछ ही छोड़ दिया तुमने तो। और उसको कहते हैं, बोल तुम्हें क्या चाहिए। इंद्र कहता है, मैं तुम्हें इंद्र सिंहासन दे सकता हूं, इंद्रासन। वो युवक कहता है, मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं। इंद्र को आश्चर्य होता है कि लोग तो इसी के लिए तपस्या करते, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा बना सकता हूं। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए, मैं तुम्हें मोक्ष अभी कभी दे सकता हूं। वो कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, फिर इससे बढ़कर तो वो संसार में और कोई चीज ही नहीं है, इसी के लिए तो लोग संसार में तपस्या करते हैं। तुमने इतनी जो तपस्या की, लक्ष्य क्या है, क्या चाहिए तुमको, मांगो। वो युवक तपस्वी कहता है वो कन्या कहाँ है, क्या पूछता है कि वो कन्या कहाँ चली गई। वासना बहुत सूक्ष्म है, इच्छाएं मन के किसी कोने में छिपी है, सबकॉन्शियस माइंड में सेंशुअल डिजायर्स है। पहले तो पता ही नहीं चलता ये है। ज्ञान योग एक तरफ, सेवा तो और दूसरी तरफ, तृष्णाएं इच्छाएं वासनाएं एंड सेंशुअल डिजायर्स अंतर मन में छिपी रहती है। इनका बोध तब होता है जब अचानक किसी अज्ञात क्षण में वो प्रकट होती है और गिरा कर चली जाती है और हाथ में बचता है पश्चाताप। बस जब हम कहते हैं संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता का आधार स्तंभ है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, परंतु हां ब्रह्मचर्य पवित्रता का एक सबसे शक्तिशाली अंग है। यदि पवित्रता 10 चीजें हैं तो उसका जो उसकी जो नींव है वो ब्रह्मचर्य है। और जब हम ब्रह्मचर्य कह रहे हैं तो उसका अर्थ है काम विकार से संपूर्ण मुक्ति, अविद्या। शरीर का कोई संकल्प मन को स्पर्श न करे, क्योंकि जैसे ही अपने पास बोर्ड है, बोर्ड जैसे ही संकल्प मन को स्पर्श करता है शरीर में उत्तेजना आती है, और जहां शरीर में उत्तेजना आएगी शरीर ऊर्जा को बाहर फेंकेगा। ऊर्जा को बाहर जाने की जो क्रिया है उसमें सुख है, पर वो सुख बहुत महंगा है, बहुत कीमती है, बहुत बड़ी कीमत चुकाकर प्राप्त किया हुआ है और है छोटा सा, पर प्राप्त करने की आतुरता अत्यधिक है। जैसे कोई माली है, बहुत बड़ा बगीचा है और तरह तरह के भांति भांति के फूल है, सुगंधित पुष्प है, पूरा मास प्रयत्न करता है, बागवानी करता है, सारे फूल खिल जाते हैं, फिर सारे फूलों को एकत्र करता है, उनका रस निकालता है और वो रस लेके जाके एक नाली में फेंक देता है। क्या ऐसे माली को बुद्धिमान कहा जाएगा या मूर्ख? मूर्ख या बुद्धिमान? शरीर में भी रस उत्पन्न हो रहा है, वो रस यदि बाहर बहेगा शरीरों को उत्पन्न करेगा, वही रस यदि ऊपर बहेगा तो ऊर्ध्वरेता योगी बनेगी, आत्मा तपस्वी बनेगी, दिशा में अंतर है। नीचे बहेगा ऊर्जा का नाश होगा, संरक्षण होगा और रस ऊपर बहेगा, सहस्त्रार ओज में परिवर्तित होगा, शक्ति में परिवर्तित होगा। ऊर्जा किस ओर बह रही है, सब कुछ उस पर निर्भर है। और ऊर्जा का संबंध संकल्प से है, यदि ये शरीर है और ये आत्मा है और ये ब्रेन है, ऐसे कुछ ट्रिगर्स है। सबसे पहला ट्रिगर है विजुअल, आंखों ने क्या देखा। दूसरा ट्रिगर है ऑडिटरी, कानों ने क्या सुना। तीसरा ट्रिगर है टच। चौथा ट्रिगर है इमेजिनेशन, कल्पना। तो जैसे ही, और पांचवा ट्रिगर है याद, मेमोरी, पूर्व के भोगे हुए भोग की स्मृति। जैसे ही ये ट्रिगर आएंगे, ब्रेन स्टिमुलेट होगा। जैसे ही ब्रेन स्टिमुलेट होगा, स्पाइनल कॉर्ड है यहां, स्पाइनल कॉर्ड ट्रिगर होगा। और जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड ट्रिगर होगा, जो वेन नर्व्स है नीचे बह रही है, वो स्टिमुलेट होंगे। और जैसे ही वो स्टिमुलेट होंगे, सेंसुअल ऑर्गन्स स्टिमुलेट होंगे। और जैसे ही वो स्टिमुलेट होंगे, सारा रक्त वहां बहेगा और जो ऊर्जा शक्ति है और जो देह में वीर्य है वो बाहर जाएगा। उसका बाहर जाना का संबंध संकल्प से, विजुअलाइजेशन से है, इमेजिनेशन से है, टच से है, सुनने से है, देखने से है, मन में क्या आ रहा है उससे। इसका संबंध यहां है। और जैसे ही ऊर्जा बाहर जाएगी, संपूर्ण शरीर में सुखद अनुभूति होगी, क्योंकि यहां से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, सीरोटोनिन, डोपामिन, और क्षण भर के लिए सुख का अनुभव होगा। फर्स्ट इवेंट, फिर से कोई ट्रिगर, कोई स्टिमुलस। सेकेंड इवेंट, फिर से। थर्ड इवेंट, फिर से। फोर्थ इवेंट, और फिर धीरे धीरे एडिक्शन, सिगरेट छूट सकती है, बीड़ी, तंबाकू, दारू, नशा छूट सकता है, बाहर का है ये जो लत है, इससे छूटना कभी कभी मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ गुप्त है। और वो जो ट्रिगर है कहीं से भी आ सकता है, कोई दृश्य, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई ड्रेस, कोई पोस्टर, कोई पिक्चर, कोई स्टैचू, कोई पुतला, कोई वस्तु, कोई याद, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई किताब, कोई कहानी, किसी का स्पर्श, कुछ भी, वो ट्रिगर इधर से यहां प्रवेश करेगा, इधर से उत्तेजना होगी, ऊर्जा बहेगी। जिस ऊर्जा में एक शरीर को जन्म देने की शक्ति है, वो ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होगी। और यदि उस ऊर्जा को यहीं रोक दिया जाए और वो बाहर जाए ही ना, क्योंकि इनको रोक दिया गया है, जो सोचा जा रहा है वो पवित्र है, जो देखा जा रहा है वो पवित्र है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास है, तपस्या का अभ्यास है, संसार से वैराग है, यहां पर कंट्रोल है, तो यहां अपने आप कंट्रोल होगा, और वो जो शक्ति है वो ऊपर बहेगी। फिर वो वीर्य ओज शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, और लंबा समय तक वो कंट्रोल में रहेगी। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत शक्तिशाली होगी। एंड व्हेन द सीमेन रिमेन्स अनडिस्चार्ज्ड, the energy flows upwards and will convert, get converted into a great spiritual power. यहां पर शक्तिशाली संकल्प होंगे, शक्तिशाली स्मरण शक्ति होगी, और व्यक्ति की वाणी में प्रभाव होगा, ऊर्जा होगी, आकर्षण होगा। एक वो आकर्षण है ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य अर्थात इसी शक्ति का संरक्षण। संसार के जितने युवक हैं, सबसे ज्यादा व्यय इस शक्ति को करते हैं, मास्टरबेशन। बाकी सभी एडिक्शंस दिखाई देते हैं, यह दिखाई नहीं देता। चुपके कमरे में जहां कोई नहीं, अमृत वेला, मुरली, ज्ञान योग, और रात में ऊर्जा व्यय हो रही है। क्यों? जरूर कोई ना कोई स्टिमुलस है। स्टॉप ऑल द स्टिमुलाय। सबसे पहली जो मर्यादा है, जहां जहां से वो आ रहा है, स्टॉप कर दो उसको। जब तक वो स्टॉप नहीं होगा, देखना, सुनना, पढ़ना, स्पर्श, मेमोरी, विजुलाइजेशन, संसार में सबसे बड़ा एक खतरनाक बीमारी जो युवकों में है वो है सेक्सुअल फैंटेसीज। फैंटेसीज अर्थात कल्पनाएं, मन में कल्पना रचना। जब तक वो है और जब तक ये सारा हो रहा है, पश्चाताप से आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। इसके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आत्मा अतींद्रिय सुख में रहेगी तो अतींद्रिय सुख प्रकाश है, इंद्रिय सुख अंधकार है। जब प्रकाश नहीं है तब अंधकार रहेगा। अंधकार से लड़ाई करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, कितना भी लड़ाई करो कुछ नहीं मिलेगा। जो जो उसके बारे में पढ़ेंगे और धंसते जाएंगे, जितनी क्यूरियोसिटी है क्या और फंसेंगे। मार्ग है आत्मा को, चेतना को अतींद्रिय सुख से भरना। तो जहां अतींद्रिय सुख प्रकाश आ जाता है, अंधकार स्वतही विलीन हो जाता है। इसके लिए जितने मार्ग थे ब्रह्मचर्य के योगियों ने किए, सब फेल हो गए, क्योंकि सब ने लड़ाई की, सब ने काम वासना का दमन किया, दबाया उसको, और जितना दबाया उतनी ही और शक्तिशाली हो गई वो। अमेरिका में ग्रुप था सन्यासियों का, फ्लैजिलिस्ट, चाबुक रखते थे एक, जैसे ही विकार का संकल्प आया अपने आप को मारते थे, लहूलुहान कर देते थे। सजा, हे मन तूने ये सोचा तेरी ये सजा है, पर धीरे धीरे ये करते करते उल्टा होने लगा। जितना मारते थे उतनी वासना और प्रगाढ़ होती थी और भभकती थी, उल्टे परिणाम आने लगे, क्योंकि मार्ग गलत था, क्योंकि दमन था। एक वो गृहस्थी है जो संसार में फंसा है और जो दिन रात स्त्री का चिंतन कर रहा है, एक वो सन्यासी है जो स्त्री से दूर भाग गया और जंगल में चला गया, वो भी उसी का चिंतन कर रहा है, इसलिए क्योंकि इससे दूर रहना है। ये सीधा है, ये शीर्षासन कर रहा है, पर बुद्धि बीच में है। मार्ग क्या है, क्या करे जिससे संपूर्ण ब्रह्मचर्य स्वतः उपलब्ध हो जाए। विवेकानंद से किसी ने कभी पूछा था कि वो जो सभा थी शिकागो की, वहां पे बहुत विद्वान लोग थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे, ऐसा आपने क्या बोल दिया, और आपने जो बोला वो भी कोई बहुत अच्छा या बहुत असाधारण ऐसा नहीं था, जो बोला वो बोला, पर फिर लोग इतने प्रभावित क्यों हो गए। उत्तर था जो उन्होंने किसी एक पत्र में दिया, द इन्फ्लुएंस एंड द इफेक्ट दैट माई स्पीच हैड ऑन द पब्लिक वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ द स्पीच बट बिकॉज ऑफ द ब्रह्मचर्य। वो जो मैंने बोला और उसका जो प्रभाव पड़ा, वो भाषण का प्रभाव नहीं था, वो ब्रह्मचर्य का प्रभाव था। आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्शुअल थॉट थ्रू आउट माई लाइफ। 28 साल का वो युवक कहता है, आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्शुअल थॉट एंड इट इज द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य एंड इट इज द ओजस एंड द तेजस ऑफ ब्रह्मचर्य दैट फ्लोज इन मी। इसलिए इस ऊर्जा को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बार बार कॉन्स्टेंट रिपीटेशन से ये ऊर्जा नष्ट हो रही है तो धीरे धीरे कमजोरी आएगी। शरीर में कुछ नहीं होगा, शास्त्र तो कहते हैं शरीर भी कमजोर होगा, पर मेडिकल साइंस कहता है शरीर में कुछ नहीं होगा, एक्सेप्टेड शरीर में कुछ नहीं होगा, पर मन दुर्बल होगा, संकल्प शक्ति दुर्बल होगी। कोई शरीर का फ्लूइड शरीर से बाहर जाए उससे कोई हानि नहीं है, उस फ्लूइड में कुछ भी नहीं है, पर उसमें सूक्ष्म शक्ति है जो कि मेडिकल साइंस के देखने से परे है, क्योंकि वो संकल्प की शक्ति है, वो नष्ट होगी। समय नष्ट होगा, टाइम सोचने में, कल्पनाएं करने में, कुछ देखने में, कुछ पढ़ने में, संकल्प नष्ट होंगे, शरीर की ऊर्जा एनर्जी नष्ट होगी, रिलेशनशिप यदि दो व्यक्तियों के बीच ये हो रहा है तो संबंध प्रभावित होंगे, क्योंकि जो संबंध में पवित्रता थी उसमें देहभान आएगा दोनों तरफ से या एक तरफ से, वो संबंध नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कंफ्यूजन की अवस्था रहेगी निरंतर, मन स्पष्ट नहीं रहेगा, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता भंग होगी, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, रात में अरमान जागेगा और पवित्रता भंग होगी, रात में अरमान जागेगा पवित्रता भंग होगी और सुबह पश्चाताप होगा। कॉन्सेंट्रेशन लॉस। उसी तरफ, दूसरी तरफ जो इस ऊर्जा में स्थित है और अपने आप को बिजी रखा है ज्ञान योग धारणा और सेवा में, श्रेष्ठ चिंतन में, श्रेष्ठ मनन में, स्वतः ही ऊर्जा अपने आप कंजर्व होगी, संरक्षण होगा। इस सूक्ष्म बात को समझना बहुत जरूरी है। What are the sexual triggers in my life? उसकी एक लिस्ट बनानी है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। क्या है वो, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, क्या देखने से मन में सूक्ष्म हलचल होती है? What is it that causes excitement? क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत भारी है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। गुजरात में एक डाकू था, जोगीदास, खतरनाक, सब उससे डरते थे। वो एक रात सोया था, बहुत पुराने जमाने की कहानी, जिस समय डाकू रहते थे, बड़ी बड़ी बंदूकें उनके पास होती थी, घोड़े पर चढ़कर लूटने जाते थे। एक रात सोया था, आधी रात का समय, और उसे अचानक आवाज आती है, छम छम। सबसे पहला हाथ तो बंदूक की तरफ जाता है, कोई दुश्मन तो नहीं, पर देखता है एक स्त्री वहां खड़ी है। तो वो कहता है तुम कौन हो? वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, तुम्हारे शौर्य से, तुम्हारी जो पावर है, जो दबदबा है सब जगह, उस वीरता से मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। वो कहता है खबरदार, बिल्कुल मेरे नजदीक नहीं आना, क्योंकि डाकुओं में एक, वो जो उस समय के डाकू थे, उनमें एक धारणा बहुत ज्यादा थी प्यूरिटी की, वो उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, अपने गिरोह के साथ रहते थे, सामान लूटते थे और आ जाते थे बस। वो कहता है खबरदार, वो कहती है बस मुझे आपके साथ रहना है, केवल आज के लिए वो कहता है खबरदार पीछे हो जाओ। और उसके बाद दिखाया है जब जब वो जोगीदास खुमान रात में सोता था उसके दो सिपाही अंगरक्षक की तरह पहरे देते थे, किसी डाकू से रक्षा करने के लिए नहीं। क्योंकि उनमें यह धारणा थी, बहुत पक्के थे वो। और उसी डाकू खुमान के जीवन में दूसरा प्रसंग, एक दिन सुबह सुबह, बहुत सुबह सुबह, अपने घोड़े पर किसी खेत से जा रहा होता है तो एक कन्या उसे दिखती है खेत में। वो उसको कहता है तुमको डर नहीं लगता है अकेली इस खेत में? वो कहता है मुझे किस बात का डर? वो उसे जानती नहीं है वो कौन है घोड़े पर बैठा हुआ। वो कहती है मुझे किसका डर? जब तक जोगीदास खुमान है हमें कुछ नहीं हो सकता, वो हमारा धर्म भ्राता है। वो कन्या उससे कहती है गांव की जितनी कन्याएं और माताएं सभी सुरक्षित है जब तक वो है। तो वो एकदम खुश हो जाता है और अपना सीना थान कर अपना घोड़ा लेके आगे चला जाता है। एक डाकू निकृष्ट कर्म करते हुए भी ब्रह्मचर्य की शक्ति से धर्म भ्राता बन जाता है, तो एक ब्रह्मा कुमार जिसका जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता और जिसे नए विश्व की स्थापना करनी है, अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन कर दे तो कैसी शक्ति उसमें आ जाएगी, कैसी पावर उसमें आ जाएगी, कैसी एकाग्रता आ जाएगी, स्मरण शक्ति कैसी तीव्र कुशाग्र हो जाएगी, सोचना है, विचार करना है, एकांत में जाकर बैठना है और सोचना है ये सब के बारे में, संकल्पों में आनंद लेना है। तो शरीर में आनंद लेने का जो रस है वो कम होते जाएगा। जब भी व्यक्ति खाली होता है, बेचैनी होती है, शरीर में रस ढूंढता है, या तो भोजन या तो काम, बस दो ही तरफ बुद्धि जाती है। यदि कोई साहित्यिक होगा तो साहित्य में जाएगा, लेखक होगा तो लिखेगा, निसर्ग प्रेमी हो गया तो निसर्ग में जाएगा। पर ये अगर कुछ भी नहीं है और ज्ञान योग भी नहीं है तो केवल सबसे सस्ता और सबसे नजदीक वाला रस है शरीर। और इसी में अपनी ऊर्जा को नष्ट करेगा। इसके लिए इस ब्रह्मा कुमार जीवन में सबसे बहुमूल्य संपत्ति जो है वो है ब्रह्मचर्य। किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं है। सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्यूरिटी। संबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्यूरिटी। संबंध छूट जाए तो चलेगा, प्यूरिटी ना छूटे। और यदि किसी संबंध में सूक्ष्म अपवित्रता है, इट्स बेटर टू लेट गो ऑफ दैट रिलेशनशिप देन कॉम्प्रोमाइजिंग प्यूरिटी। भगवान एक ही काम करने आया है बस, पतित को पावन बनाने। यदि इस फर्स्ट सब्जेक्ट में ही फेल तो कितनी सेवा कर लो और क्या भी कर लो क्या फायदा? जीरो। भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर सेवा की, पर प्यूरिटी में फेल तो सब में फेल। इसके लिए एकांत में जाना है, पढ़ना है, सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है। तीन किताबें हैं जिनके नाम हम गिना रहे हैं, अपनी डायरी में नोट करके रखना है। सबसे पहली किताब सेलिबसी बाय स्वामी शिवानंद, ऋषिकेश, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, DLS। इंग्लिश में किताब ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे ही टाइप करेंगे पूरी की पूरी किताब ऑनलाइन अवेलेबल है, HTML फॉर्मेट। अगर हिंदी में चाहिए तो मंगानी पड़ेगी ऋषिकेश से। डिवाइन लाइफ सोसाइटी स्वामी शिवानंद की लिखी हुई, दुनिया भर में जितनी आध्यात्मिक संस्थाएं होगी और जितने उसमें ब्रह्मचारी और सन्यासी रहते होंगे वो सभी उसी एक किताब को पढ़ते हैं। छोटी सी किताब है, इंग्लिश में ऑनलाइन पीडीएफ, ऑनलाइन एचटीएमएल टाइप करते ही आ जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ सेलिबसी किताब का नाम, हिंदी में ऐसा ही कुछ, ब्रह्मचर्य की साधना हिंदी में। यह पहली किताब। दूसरी किताब सेलिबसी इंग्लिश में, और यह किताब ऐसी नहीं है कि आज के आज पढ़ लो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और हर दिन पढ़ना है, क्योंकि लेखक ने जिस गहराई को छुआ है बड़ी गहरी है बातें। साकार और अव्यक्त मूल्यों में पवित्रता की बातें आती है, ब्रह्मचर्य की बातें इतनी नहीं आती है। पहली किताब। दूसरी किताब ये थोड़ी मिलना मुश्किल है, उसका नाम है, मराठी में है परंतु उसको सभी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। आपको ये दोनों किताबें मिल जाएगी, जो हमारा यज्ञ का या मधुबन में जो हमारा ग्रुप है उसकी जो वेबसाइट है angelofshiva.com, उसमें आप ढूंढो तो ये दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी और वो इंग्लिश। दूसरी किताब का नाम है ब्रह्मचर्य हित्स जीवन, ये भी लिखी है स्वामी शिवानंद, परंतु ये शिवानंद दूसरे है, ये महाराष्ट्र में वरुड़ है एक जगह वर्धा के पास, उसके उनकी लिखी हुई। और ये किताब तो बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इसमें ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो पहली किताब में भी नहीं है। इस किताब का भी नाम ब्रह्मचर्य ही है, हिंदी में वही नाम है, पर स्वामी शिवानंद बड़ी जगह मिलेगी, मुंबई या और कोई जगह पर हिंदी में या इंग्लिश में भी, कई भाषाओं में ट्रांसलेट है। तीसरी किताब यज्ञ की है, जगदीश भाई की लिखी हुई, सेलिबसी ब्रह्मचर्य। बाकी सारी किताबें छोड़कर पहले इसको ठीक करना है, क्योंकि कुमार जीवन में एक ही गलती है और कोई गलती नहीं है, काम। जिसने इसको रोक दिया, इस ऊर्जा को अंदर कर लिया, उसका जीवन सफल। बुद्धि एकाग्र, फिर सारा ज्ञान एक धक से हम ले सकते हैं। जिसने इसी को नहीं हासिल किया उसकी बुद्धि भटकती रहेगी। समझना है साइंटिफिक मेथड्स क्या है, समझना है सभी धर्म वालों ने द्वापर से अब तक क्या सोचा इसके बारे में। आज सुबह की मुरली, तुम्हारे मन में कोई भी गंदे ख्यालात नहीं आने चाहिए। गंदे ख्यालात शब्द निकालो, गूगल में टाइप करो, सबसे पहली डेफिनेशन है गंदे ख्यालात मीन्स सेक्सुअल थॉट्स। आत्मा में सबसे गहरी जो इच्छा है वो है मिलन की, परंतु ये जो इच्छा है ये है परमात्म मिलन की, परंतु वो होता नहीं इतना आसान। उसके लिए तो साधना है, तपस्या है, श्रीमत है, मर्यादा है। इसलिए शरीर के मिलन की प्यास है, अजीब सी आतुरता है प्यास की, क्योंकि वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये। सुबह भी कहा था आत्मा को सुख चाहिए बस, कैसे भी करके, क्योंकि वो सुख स्वरूप है, उसको सुख चाहिए। अतीन्द्रिय सुख उसको नहीं दोगे तो दिन भर इंद्रिय सुखों की वो मांग करेगी, मांग नहीं डिमांड नहीं, जबरदस्ती भी करेगी। संसार में जितने कारागार हैं, प्रिजन्स, जेल्स, कौन बैठे हैं वहां पर बंदी गृह में, सभी कामना के वासना के आवेग में आकर किए हुए अपराध है। इतनी प्रचंड आवेग कि रोक ही नहीं पाए, पता ही नहीं चला फिर ये क्या है, फिर इससे कोई संबंध ही नहीं है कि वो 5 साल की बच्ची थी या 25 साल की जवान, इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध ऊर्जा का बाहर जाने से है, वो केवल साधन है, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। सुख उस व्यक्ति से नहीं मिल रहा है, सुख मिल रहा है बाय डिस्चार्ज। दूसरा व्यक्ति तो केवल एक निमित्त है। और जब तृष्णा है इस सुख को पाने की, वो वास्तव में खुद ही खुद से मिल रहा है। जैसे एक कुत्ता है हड्डी को पकड़ लेता है और काटता है, चूसता है उस हड्डी को, क्या होता है थोड़ी देर के बाद उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, फिर अपना ही खून पीता है, उसको लगता है वो खून हड्डी से आ रहा है, पर वो खून हड्डी का नहीं है, अपना ही खून है। और उसको खुशी खुद सुख जो मिल रहा है अपने ही इससे मिल रही है, पर यह भ्रम होता है कि स्त्री से इस व्यक्ति से यह मिल रहा है, उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहां तो ऊर्जा जाते ही सुख की अनुभूति है, यह शरीर की साइकोलॉजी है, तन बदन में सुखद अनुभूति, कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड एंड बॉडी फॉर फ्यू सेकेंड्स। फीमेल्स में 12 सेकेंड्स, मेल्स में 8 सेकेंड्स, ऐसा निष्कर्ष निकाला है। कितना सुख है दैहिक मिलन में, कितना समय वो चलता है, एंड सून फॉलोड बाय फ्रस्ट्रेशन, इसके लिए सो जाते हैं, थकान, और फिर पश्चाताप, फिर से वही। बाइबल में उदाहरण है इसका, क्षणिक वैराग आ जाता है विकार के बाद। जैसे कोई मां है, लेबर पेन्स, कितना पेन होता है उसको, इतना दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है डिलीवरी के समय, कहती है बस अभी इसके बाद नहीं चाहिए कोई और, ये लास्ट बच्चा हो गया, पर बच्ची निकली या कुछ जो चाहिए था वो नहीं निकला, फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, वो प्रोसेस चालू रहती है। इसके लिए काम जीत बनना, अर्थात काम को समझना, हाउ डज इट एक्ट, वो कार्य किस तरह करता है, क्यों भगवान इतने सालों से एक ही चीज कह रहा है और फिर भी कोई संपन्न नहीं बना है। जरूर शत्रु बहुत शक्तिशाली है, शत्रु इतना कमजोर नहीं है कि बस हमने सोच लिया अच्छा ठीक है हम तो एकदम पवित्र है, हमें तो कोई आकर्षण नहीं है। ऐसे कहने वाले, सब कुछ जानने वाले ही अक्सर गलती करते हैं, इसको लिख के रखना है। गलतियां कौन करता है? जो सब जानते हैं। अज्ञानी कम गलतियां करते हैं, पर जो सब कुछ जानते हैं वही सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जिनको ये हो गया कि मेरा तो अभी कुछ नहीं, सब ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे भाई हैं, सब आत्मिक दृष्टि है, हमेशा फरिश्ता स्थिति है और निरंतर बाबा की याद तो है ही है, और कुछ है ही नहीं बाबा के सिवा, ऐसे कहने वाले कुमार आज चतुर्भुज होकर बैठे हैं, डबल। पहले सिंगल थे, अभी चतुर्भुज है। और उसमें भी फिर कहते हैं पहले तो अकेले ही ज्ञान में चलते थे, अब तो 2 बच्चे पत्नी सब के सब ज्ञान में चल रहे हैं, ये बाबा की प्लानिंग होगी, ये बच्चे भी बाबा के ही है। इनके आने के लिए ही हमने त्याग किया, त्याग कहां जाएगी आत्माएं, नहीं तो एडवांस पार्टी की, उनको भी तो ज्ञानी मां बाप चाहिए, हमने अपनी तपस्या का त्याग कर उनके लिए। और फिर वहां फंसते हैं और सारा जीवन बंधन में, कभी तो छूटेंगे इस आश से। जैसे एक पत्नी अपने पति से कहती है कि हमारी शादी को 25 वर्ष हो गए, पता नहीं कैसे बीत गई है, पता ही नहीं चला, समय का पता ही नहीं चला। पति कहता है समय का पता तो कैदी को चलता है, जेलर को थोड़ी। इसके लिए उस मार्ग में जाना ही नहीं है, बंधन ही बंधन है। एक गृहस्थी भक्त है, भगवान से प्रार्थना करता है, मिन्नतें मांगता है, भगवान प्रकट होते हैं, बोलो क्या चाहिए। वो कहता है मैं गृहस्थी हूं, तंग आ गया हूं, मुझे कुमार बना दो वापस, यही मेरी मन्नत है। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। तो कुमार जीवन अर्थात जन्नत, कुमार जीवन अर्थात निर्बंधन, कुमार जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह, कुमार जीवन अर्थात जो करना है वो करो, बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, स्वतंत्र है, किसी का कोई बंधन नहीं, किसी को कहीं छोड़ना नहीं है, किसी बच्चे को कहीं ड्रॉप नहीं करना है और किसी को सामान उठा के नहीं लाना है किसी का सिर पर, स्वतंत्र है, जो मर्जी है करो। ऐसे जीवन में कोई साथी मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, ऐसे संकल्प घातक है। कितनी मुरलियां है कुमारों से मुलाकात, ऐसा साथी तुमको कहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है वो, पांव भी दबा देगा तुम्हारे। और हम हमेशा कहते हैं कि बाबा के पास चार थालियां आई, पहली थाली मधुबन से आई, भोग, मधुबन से भोग की थाली आई, पैसा किसी और का, अनाज खरीदने वाला कोई और, अनाज डिपार्टमेंट, भोजन बनाने वाली माता है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज, रोटी बनाने वाले दूसरे, सब्जी बनाने वाले दूसरे, और भोग लगाने वाला दूसरा। और फिर बाबा के साथ पास थाली आई पहली, दूसरी थाली सेवा केंद्र से आई, पैसे किसी और के, भोजन लाने वाला, अनाज लाने वाला कोई और या वही पहला वाला, भोजन बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाला वही या कोई और। और ये थाली बाबा के पास आई दूसरे नंबर की। तीसरी थाली बाबा के पास आई गृहस्थी, भोजन कमाने वाला, पैसे कमाने वाला खुद है, भोजन लाता है, अनाज लाता है, भोजन बनाने वाला युगल है या खुदी कभी कभी, भोग लगाने वाला शायद वही या कोई और। और ये तीसरी थाली बाबा के पास आई। चौथी थाली आई बाबा के पास एक कुमार की, पैसे खुद कमाता है, सामान खुद लाता है, भोजन खुद बनाता है और भोग खुद लगाता है। तो बाबा की नजर सबसे पहले किस थाली पर जाएगी? एक कुमार के थाली पर, क्योंकि सब कुछ खुद कर रहा है। इसलिए जीवन भाग्यशाली जीवन है, स्वतंत्र जीवन है। ऐसे जीवन में चतुर्भुज भव का वरदान नहीं ले लेना है बाबा से, सतयुग में बनना संगम पर नहीं। मन ही मन संकल्प चाहिए विरोध के, घृणा के, तुम्हें आज की मुरली, तुम्हें इस दुनिया से नफरत आनी चाहिए। क्योंकि मन में अगर ये विचार नहीं रहेंगे तो धीरे 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 आकर्षण, हलचल, खुजली, टिकलिंग सेंसेशंस, आहा कितने सुखी है ये लोग। उस दिन हम अनादरा पर थे कुछ समय पहले, तो वहां पर बहुत सारे युगल सनसेट पॉइंट, दो दो लोग आ रहे जा रहे, दो कुमार वहां से संसार के बाहर के, और वो सबको देख रहे हैं और कह रहे, हे खुदा मेरे लिए भी किसी को भेज ये सबको तूने एक एक दे दिया, मुझे भी तो कोई दे। चिल्ला रहा था ऐसे बाइक पर बैठकर। तो संसार में तो ये सब है ही है, वो शरीर के साथ ही कब तक साथ निभाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, ये अविनाशी साथी है, इसी को पकड़ लेना है और सारा जीवन इसके सहारे चलना है। संकल्प भी नहीं करना कि कोई मिल जाए, कोई भोजन पका के दे, कोई सामान पका के कुछ खरीद के दे, कोई हमारा ध्यान रखे, हम बीमार पड़ गए, किसी का कुछ नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म, विथ इट्स शिकैनरी, विथ इट्स हाउलिंग राइटियसनेस ऑन द सर्फेस एंड अटर हॉलोनेस विद इन, एंड विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग। मुझे घृणा है इस संसार से, ये संसार नहीं स्वप्न है, दुस्वप्न है, नाइटमेयर, ऐसे संसार से मुझे घृणा है, जहां पर क्या है, विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, चेहरे तो बहुत सुंदर है दिल खोटे है, विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म, विथ इट्स शिकैनरी, दिखावा है, ढोंग है, सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, शॉपकीपिंग दुकानदारी है, सब कुछ बिकता है यहां पर, ऐसे संसार से मुझे घृणा है। आई हेट मैरिजेस, मुझे ये ऐसा संसार नहीं चाहिए, तीव्र वैराग की आवश्यकता है। मंद वैराग कुछ नहीं करेगा, मंद वैराग जैसे एक व्यक्ति है रोज अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे सन्यास लेना है, मैं तंग आ गया हूं संसार से, रोज कहता है, ये भी कोई यहां सुखी नहीं है गृहस्थ में, मुझे तो सन्यास लेना है, मुझे तो आज सन्यास लूंगा वगैरह वगैरह रोज कहता है। उसका जो पत्नी का भाई है वो भी युवा है, वहीं बैठ के रोज सुनता है, वो एक दिन कहता है अपने जीजा से, सन्यास ऐसे थोड़ी लिया जाता है, तो फिर वो पूछता है कैसे लिया जाता है, वो कहता है ऐसे, वो छोड़ता है और हमेशा के लिए चला जाता है, फिर कभी लौट के नहीं देखता, धक से, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, रोज रोज नहीं, मैं करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं, अच्छा आज से छोड़ता हूं, आज से कोई संपर्क नहीं रखूंगा, आज से कुछ नहीं देखूंगा, ऐसा आज ये मेरा लास्ट है। अव्यक्त महावाक्य 1977 की मुरली के तीन बातों को ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना देना, थ्री पीज, फर्स्ट पाप, दूसरा पश्चाताप, तीसरा पार्डन, बार बार माफ पाप करना, फिर पश्चाताप करना और माफी मांगना, इस बात को ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना देना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, थ्री पीज, पाप करना, फिर पश्चाताप करना और फिर माफी मांगना, बाबा मुझसे ये हो गया माफ कर दो, बाबा को लेटर लिखना लंबे लंबे, सब कुछ हो गया फिर चार दिन के बाद फिर से पाप, फिर से पश्चाताप, फिर से पार्डन, थ्री पीस, इसको ब्राह्मण जीवन की रसम नहीं बना के रखना। कब तक माफ करेगा बाप, आज गलती कर ली, सच्चे दिल से माफी मांग ली, चार दिन के बाद फिर से गलती, इसका क्या मतलब है, बुद्धू नहीं है बाप जो उसको बुद्धू बनाओगे। तो सबसे बड़ी मौज जो है ब्राह्मण जीवन की वो है कुमार जीवन। अब तक ये भूमिका थी, अभी क्लास की शुरुआत। ये भगवान की फौज है, ये आर्मी है उसकी, और उसमें हम सिपाही है, सोल्जर्स है, वो कमांडर है, बैच लगा हुआ है, आर्मी ड्रेस है हमारी। हम संसार की नाव जो गर्त हुई है उसको, उस बेड़े को बाहर निकालने वाले। हमारा मौजों का जीवन है, और सबसे बड़ी मौज है ब्रह्मचर्य, सबसे बड़ी मौज है प्यूरिटी, और सबसे बड़ा दुख है अब्रह्मचर्य, और सबसे बड़ा दुख है काम कटारी। इसके लिए कितने महावाक्य है मुरलियों में, काम हिंसा है, काम कांटा है, काम सबसे बड़ा दुश्मन है, काम सबसे बड़ी जंग है, काम सबसे बड़ी आग है। बच्चू बादशाह पीरू वजीर सभी विकारों का हेड है, सरदार है। इसके लिए सबसे पहली चीज तो इस शत्रु को कम नहीं समझना, क्योंकि बड़े बड़े महारथी भी गिर गए। 30-30, 40-40 साल ज्ञान में चलने के बाद शादी करने का संकल्प आया और पुरानी दुनिया में चले गए। हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने दिन रात सेवाएं की यज्ञ में, और जब बूढ़े हो गए थोड़े से और बीमार पड़ गए और अस्पताल में आए, और कोई सेवाधारी नहीं मिला बीच में, एक दिन दो दिन के लिए, ऐसे ऐसे संकल्प आने लगे, यदि मैंने शादी कर ली होती तो आज बीबी बच्चे मेरी देखभाल करते। कौन कह रहा है? साधी आत्मा नहीं, दिन रात जिन्होंने सेवा की, परंतु केवल सेवा की, बस ज्ञान योग जीरो। कभी अमृत वेला नहीं, कभी मुरली का मनन नहीं, चिंतन नहीं, केवल सेवा 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 सेवा, और फिर लास्ट में कमजोरी आ जाती है। ऐसा नहीं करना है। तो ब्राह्मण जीवन में सात प्रकार की मौज है। सबसे पहली अमृत वेला, ऐसे कितने हैं यहां पर जिन्होंने पिछले एक मास में, सब सामने देखेंगे, आजू बाजू कोई नहीं देखेगा, पिछले एक मास में एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया। केवल एक इंद्र सभा है, झूठ चल ना सके। फाउंडेशन ही अमृत वेला है। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, अमृत वेला स्वयं को इतना प्रभु प्रेम से भर दो कि सारे दिन भर फिर किसी देहधारी का प्रेम आकर्षित नहीं करेगा। अगर अतीन्द्रिय सुख से नहीं भरा सुबह, तो दिन भर कोई साथी चाहिए, किसी का साथ चाहिए, कोई अच्छा लगता है, इसका बोलना बहुत अच्छा है, इसकी वाणी बहुत मीठी है, इसका चेहरा ही बहुत सुंदर है, आकर्षण थोड़ा सा तो देख लूं। अरे हम तो फिल्में तो नहीं देखते, ट्रेलर जरूर देख लेते, अप टू डेट भी तो रहना पड़ता है ना, कौन सी फिल्म रिलीज हुई, कितनी चली, चली कि नहीं चली, कि फ्लॉप हुई, और उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसका उसके साथ था, अब क्या हुआ, आगे चल रहा है कि ब्रेकअप हो गया। संसार की न्यूज, संसार की बातें, वो संसार के एक्टर्स जो चरित्रहीन है, जिन्हें न आत्मा की खबर है न परमात्मा की, जिन्हें पवित्रता का अंश मात्र भी ज्ञान नहीं है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, हम अपनी ऊर्जा विचार शक्ति इस बातों में लगा के रखें। वो संसार के लोग क्या कुछ कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट, अंतमति सो गति, वो क्रिकेट देखते देखते ही अंतिम क्षण आ गया तो इसकी याद में जाओगे, बाप की या उन क्रिकेटर्स की? क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्रिकेट विकेट देखना चाहिए? क्या कहेंगे? वो भी एडिक्शन है, वो भी एडिक्शन ही है. ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज, ये तीन नए एडिक्शंस हैं. ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, खरीदना कुछ नहीं है, खाली देखना चालू है. और ऑनलाइन न्यूज, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इस पार्टी ने ऐसा कहा, वो पार्टी क्या कहेगी, ये तीनों ही एडिक्शंस हैं. और ये सब खालीपन की निशानी है. जब आत्मा ज्ञान योग से रिक्त है, अमृत वेला नहीं हो रहा है रोज, तो दिन भर यही सब तरफ बुद्धि जाएगी, अपने आप बुद्धि जाएगी. इसलिए सबसे पहली चीज आज से ही पक्की करनी है. और अमृत वेला शक्तिशाली और रेगुलर बनाने की विधि है, जल्दी उठना नहीं, जल्दी सोना. अमृत वेला उठने की विधि क्या है? जल्दी सोना. परंतु रात का समय और रात के सन्नाटे में शास्त्रों में दिखाया है, जो राक्षस होते हैं ना, निशाचर, उनकी शक्तियां बढ़ जाती है. डिजिटल अट्रैक्शंस रात में ज्यादा बढ़ते हैं. सारे दिन भर सेवा करो, जॉब करो, बिजनेस करो, थकान कमरे में, और उसके बाद में माया चालू, निशाचर. रात के समय जिनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है. प्लानिंग करनी है कैसे जल्दी सो जाए, 9:30 या 10 से पहले, हो सके तो 9:30. कितना भी जॉब हो, कुछ हो, कुछ हो, एडजस्ट करना है और जल्दी सो जाना है. इसको स्विच ऑफ या साइलेंट, एटलीस्ट ऑफलाइन चले जाना है सोने से आधा घंटा पहले. अमृत वेला यदि शक्तिशाली करना है तो उसके लिए उसके महत्व को समझना पड़ेगा. उसकी भी किताब है यज्ञ में, अमृत वेला. जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़े, जिन्होंने पढ़ ली है रिवाइज करें. सबको जरूरी है, क्योंकि अमृत वेला ही वीक हो रहा है, तो फाउंडेशन ही वीक है. फिर कितनी भी सेवा करते रहो दिन भर, कमजोरी रहेगी, हलचल रहेगी, गड़बड़ होगी. सबसे पहली बात अमृत वेला की मौज है. अमृत वेला स्वयं को अतीन्द्रिय सुख से भर देना है. कितने सारे अनुभव करने हैं, विश्व को सकाश देनी है, सर्व संबंधों का अनुभव करना है, अशरीरीपन का अनुभव करना है, पांच स्वरूपों का अभ्यास करना है, चिंतन करना है, बहुत सारे काम हैं. इतने सारे काम करने होंगे क्या अगर रोज ही मिस हो रहा है तो, या कभी कभी मिस हो रहा है तो? चाहे कुछ भी हो जाए, अमृत वेला मिस ना हो. और टारगेट थोड़ा जल्दी का रखना है, 4 का टारगेट नहीं रखना है, 4 बजे उठना, पीछे जाना है. हम लोगों का संगठन है मधुबन में, उठने का समय है 1:45 AM, 2:15 बजे, ताकि नहाकर मधुबन में जाए. फिर भी कम पड़ता है, फिर भी लगता है बहुत कुछ करना रह गया, फिर भी रखता है आज वो अनुभव क्यों नहीं हुआ, फिर भी लगता है ये देह की अब भी क्यों खींचता है, फिर भी लगता है प्रेम के अश्रु क्यों नहीं बहे प्रभु प्रेम में. जब रात का सन्नाटा हो उस सन्नाटे में तपस्या की जाती है। और मधुबन का वो सन्नाटा सुबह सुबह का, जब सारे ब्राह्मण भी सोए पड़े हैं, वो जो सन्नाटा होता है कुटिया में, वो जो सन्नाटा होता है शांति स्तंभ में सुबह 2 बजे, वो जो सन्नाटा होता है बाबा के कमरे में, कोई आवाज नहीं। संसार भी सोया तो ब्राह्मण संसार भी सोया। इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट, अंग्रेजी में शब्द है सिबिलेंस। सिबिलेंस अर्थात रात के समय जो कीड़े मकोड़ों का आवाज आता है ना, उस समय तपस्या की जाती है। उस समय शरीर को तपाया जाता है, तब तपस्या होती है। अगर लक्ष्य ही रखो कि 4:15 उठना है तो उठेंगे 4 बजे या 4:15 बजे या 4:30 तो कभी 5। अगर सब कुछ करके भी फेल हो रहा है, अपने किसी दोस्त को बोलो कि मुझे सुबह 3:30 बजे कॉल करे। अलार्म फेल, अलार्म लगाया। एक कुमार था, रोज अलार्म लगा के रखता था, जैसे ही अलार्म बजता था रजई से हाथ कब निकलता था और अलार्म के ऊपर, और फिर जब उठता था तो 5:30। फिर पश्चाताप, आज फिर अमृत वेला मिस युक्ति की उसने। बाजू का जो बेड था उसके नीचे जाके खड़ी रख दी ताकि जब अलार्म बजे जोर से कमरे में तो उठूंगा, रजाई को नीचे करूंगा, उठूंगा फिर उधर नीचे घुसूंगा और फिर अलार्म लगाऊंगा, तब तक तो जागरण हो ही जाएगा। दूसरे दिन जोर से अलार्म बजा, एकदम से उठा, क्या हुआ क्या हुआ, उठा फिर पता चला नीचे रखी हुई है, उस बेड के नीचे घुसा, उसको बंद किया और वहीं सो गया। फेल। और उठ भी जाओ तो नींद का प्रभाव, कोई अमृत वेला हम देखते कोई इधर गिरता है, कोई इधर गिरता है, कोई इधर तो कोई इधर तो कोई उधर तो कोई उधर। कुछ दिन पहले एक भाई शांति स्तंभ पर बैठा हुआ पूरा ही नीचे ही, यहां तक नीचे चला गया, तो एक भाई ने उसे कहा अरे उठो क्या कर रहे हो, उसने कहा सकाश, धरती को सकाश दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, धरती को नीचे झुक झुक के। नींद भयंकर प्रकोप अमृत वेला, ऐसा भयंकर नींद कि क्या करूं, कहीं बिस्तर विस्तर मिल जाए या कोई ऐसा सुनसान अंधेरा कोना और दीवार से टेक कर। हाँ योग, और सारे कोने यदि भरे हो तो मुश्किल है, फिर तो कहां सोए। हाँ? हमारी जगह ले ली रोज की सोने की। सबसे बड़ी मौज अमृत वेला है। अगर अमृत वेला नींद में जा रहा है, साधारण हो रहा है, नींद में साधारण, उबासी में, व्यर्थ में, तो दिनचर्या भी हल्की फुल्की रहेगी, ढीली ढाली रहेगी, उसमें कोई रस नहीं आएगा। धीरे धीरे संसार के आकर्षण आएंगे, ये सारे सेक्सुअल ट्रिगर्स आ जाएंगे जितने गिनाए, और फिर ऊर्जा बहेगी, दुख होगा। फिर जब जब मुरली में शब्द आएंगे काम महाशत्रु है, अंदर अच्छा नहीं लगेगा। पहली मौज। दूसरी मौज मुरली। मुरली सुनना नहीं, मुरली पढ़ना नहीं, केवल ये मौज नहीं है, मुरली के चिंतन की मौज, मुरली के मनन की मौज। सुबह की मुरली। तुम्हें इस संसार से नफरत होनी चाहिए, किसी से भी दिल नहीं लगाओ, किसी से भी दिल नहीं लगाओगे, एक बाप से प्यार करो और किसी से भी प्यार नहीं करो। ये दुनिया छींची है, ये दुनिया गंदी है, ये दुनिया तमोप्रधान है, पतित ही पतित, यहां सब कुछ विकारी है, सब दुख देने वाले, यहां के संबंध भी बंधन है। मुरली पड़ी ना सुबह की, कैसी खतरनाक है, बात बात पर बोला है, तुम्हें इसका कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए यहां का। मुरली की मौज, व्यस्त दिनचर्या चाहे कितनी भी हो, चाहे जॉब करते हैं, सेंटर पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, बाहर कमरा लेकर रहते हैं, कहां पर भी रहते हैं, समय निकालना है मुरली चिंतन के लिए। और उसके लिए दो चीजें आवश्यक है, एकांत और मौन। ऐसे स्थानों पर जाना है, सबसे पहला छत नहीं है गार्डन नहीं है और कहीं दूसरी जगह जाओ, सड़क पर जाओ। सुबह सुबह जैसे ही अमृत वेला पूरा होता है 4:45 बजे, 4:45 से लेके तो 6:30 तक का टाइम है, 6 तक का टाइम है, इस टाइम पर सोना नहीं है, मुरली चिंतन का समय है। मुरली लो, सबके पास मोबाइल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, किताब की जरूरत नहीं, पेपर की जरूरत नहीं, कहीं पर भी जाओ, एकांत में जाओ, बाइक लो और कहीं पर जाओ, पार्क करो और घूमो एकांत में। कोई पहाड़ी, कोई झरना, कोई झील, कोई नदी, कोई निसर्ग रम्य स्थान, कोई खेत जो सुरक्षित है, एकांत में वहां जाकर बैठना है और मुरली का अध्ययन करना है। स्वाध्याय, तब तक उस मुरली में कोई रस नहीं है। रोज गए सेंटर पर बैठे, मुरली सुनी और आ गए, पुरानी चाल, पॉइंट्स लिख ली, क्या लिखी हमको भी नहीं पता। एक भाई ने उसका मुरली की डायरी दिखाई थी, इतनी नींद आ रही थी, जो भी लिखा गोल 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 ही लिखती रहा, आंखें खुली है लिख रहा है पर नींद, बाद में देखा ये क्या लिख दिया, गोल 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 कर दिया सब, नींद में लिखा हुआ। क्या मतलब है, किसको धोखा दे रहे, सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को ही धोखा दे रहे, हिपोक्रेसी, आत्मवंचना, दंभ। अगर मौत चाहिए इस ब्राह्मण जीवन में, इस भोले की ये फौज, तो उसके जो महावाक्य है उसका रसपान करना है, पीबत राम रस। तीसरा है भोजन। यहां कितने लोग हैं जो खुद भोजन बनाते, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे हैं जो भोजन खुद बनाते हैं, उनको बाबा की तरफ से बहुत मदद है और बहुत ज्यादा मार्क्स है। जो नहीं भी बनाते उनको भोग तो जरूर लगाना है। भोजन में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, किस तरह का भोजन खाया जा रहा है। और भोजन में चार बातें याद रखनी है जो कि लिख के रखनी है, ये चार चीजें नहीं करनी है। सबसे पहला हंगर लेस ईटिंग, भूख है नहीं पर खा रहे, पूरा भोजन छोड़ दो, कुछ छोटा मोटा ले लो, सूप ले लो, फ्रूट ले लो, भूख नहीं है जबरदस्ती खा रहे। दूसरा ओवर ईटिंग, कोई चीज बहुत ज्यादा टेस्टी बन गई, ज्यादा ही खा लिया, जितना ज्यादा खाएंगे उतना अमृत वेला नींद, रात को ज्यादा खाएंगे तो। गरिष्ठ भोजन, हंगरलेस ईटिंग, ओवर ईटिंग, ये दूसरा, बहुत खा लिया बहुत खा लिया बहुत खा लिया बहुत खा लिया। तीसरा रॉन्ग टाइप ऑफ फूड, अत्यंत तला हुआ भुना हुआ, बहुत ज्यादा चटपटा, बहुत तीखा, बहुत मसाले वाला, ये योगी का भोजन नहीं है। योगी का भोजन अर्थात सिंपल, स्मॉल, क्वांटिटी भी कम हो। हम उतना खाते हैं जिससे आधा पेट हमारा भरता है और आधा डॉक्टर का, ज्यादा ही रहम दिल है, नहीं चाहते कि डॉक्टर भूखों मरे, उसका भी बिजनेस चालू रहे, इसलिए हम ज्यादा खाते हैं, बीमार पड़ते हैं। लोग ज्यादा किससे मरते, ज्यादा खाने से या कम खाने से, कोई है जिसने कम खाना खाया और वो मर गया? कभी खबर पड़ी न्यूज़पेपर में इसने कम खाना खाया था इसलिए मर गया? अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था जेफरसन, उसने कभी लिखा था, आई नेवर रिपेंट फॉर हैविंग ईटन लेस। उसने कहा कि मैं इस बात के लिए कभी भी पश्चाताप नहीं करता, हम मतलब कभी पश्चाताप नहीं करते, कल रात में मैंने भोजन क्यों कम खाया? किसने किया ये पश्चाताप? कभी नहीं। पश्चाताप किसके लिए होता है? ज्यादा क्यों खा लिया? कभी ऐसा आज सोचा कि सुबह का नाश्ता कम क्यों किया, ज्यादा करना चाहिए था, इतना बढ़िया था, ऐसा कोई सोचता है? कभी नहीं। क्या सोचता है? अरे बाप रे, ज्यादा कर लिया, भारीपन लग रहा है, अनयूजुअल टाइमिंग्स में फिर जाना पड़ता है छोड़ छाड़ के। टाइम वेस्ट हो गया ना बीच में ही। चौथा, फास्ट खाना खाना, क्रोध में खाना खाना, असंतुष्टता से खाना खाना, फटाफट खाना खाना, फटाफट 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 फटाफट, क्रोध में खाना, क्रोध में, क्रोध में भोजन अर्थात नॉनवेज है वो, और कंप्लेंट के साथ, इसमें नमक कम है, इसमें ये किसने बनाया, इसमें ये भी ठीक नहीं, उसमें वो भी ठीक नहीं, ये इतना नरम नरम हो गया। हमारे उधर तो ऐसा बनता था, हमारी मम्मी तो बहुत अच्छा बनाती थी, मम्मी का हाथ का भोजन अभी भी भूला नहीं है, वो चाहिए। ये चार चीजें, और भोजन में सबसे महत्वपूर्ण अर्पणम, अर्पण करके खाना है, ये तीसरी मौज। चौथी मौज है ब्राह्मण जीवन की विकारों से लड़ाई की मौज, अर्थात माया जीत बनने की मौज। ये विकारों से लड़ाई हमारे लिए द्वंद्व ना हो जाए, संघर्ष ना हो जाए, सहज सहज हो जाए। कब तक लड़ाई करेंगे? वो एक ही शत्रु काम अब तक पकड़े हुए, परछाई की तरह है, अब परछाई से लड़ रहे हैं, उसको हटाना है, प्रकाश को लाओ। सारे प्रयत्न कर लिए, प्रकाश को लाया ही नहीं। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, काम अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान सूर्य अगर निरंतर प्रकट रहे तो अंधकार आएगा ही नहीं। बाबा ने कहा है, रात ना हो इसके लिए क्या करेंगे तुम? और बाबा ने ही उत्तर दिया, यदि सूर्य निरंतर प्रकट रहे आकाश में तो रात कभी आएगी नहीं। इसके लिए निरंतर ज्ञान चिंतन होता रहे तो फिर अंधकार कभी आएगा नहीं, वो सारे ट्रिगर कभी आएंगे नहीं, वो उत्तेजना कभी होगी नहीं, और फिर वो जीवन रस कभी बाहर बहेगा नहीं। वो बह रहा है क्योंकि खालीपन है, रिक्तता है, इसलिए बह रहा है। तो चौथी मौज है, ये सारे विकारों से लड़ना बंद हो जाएगा और अपने आप सब अधीन हो जाएंगे। तीन उदाहरण है भक्ति मार्ग में हमारे यादगार। पहला शंकर गले में, सांप वश में। दूसरा कृष्ण कालिया नाग पर डांस कर रहा है। और तीसरा विष्णु शेष शैया पर लेटा हुआ है। तीन उदाहरण हमारे हैं, सांप है तीनों में भी। सांप अर्थात विकार, विकारो जीत। तो ये ब्राह्मण जीवन की मौज है। पांचवी परिस्थितियों से लड़ना। हर दिन नई परिस्थितियां, हर दिन नई समस्याएं, हर दिन नई बातें आती रहती है इस जीवन में, और हर दिन नई परिस्थितियां जो कभी हमने सोची नहीं, कभी अनुभव नहीं किया, ऐसा पेपर सामने आ गया, ऐसी आजमाइश जिसका कभी ख्याल ही नहीं था। चाहे ऐसा कुछ भी आ जाए, स्थिति अगर श्रेष्ठ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसकी स्थिति ठीक नहीं है वो दुखी होते जाएगा, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, संघर्ष करेगा। तो ये तो आना बाबा ने कहा है तो अच्छी साइन है, इट्स अ गुड साइन कि परिस्थिति आ रही है। एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा है, Bring me good news, don't bring me bad news. No, bring me bad news, don't bring me good news. Good news weakens me. बुरी बुरी खबरें हैं ना, वो मुझे बताओ मेरे बारे में कौन कौन क्या क्या बुरा कहता है. ये मत बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या क्या अच्छा कहते हैं. मुझे ये सब बताओ कि मेरा क्या क्या नुकसान हो गया, क्या क्या मेरे साथ बुरा हो रहा है. ब्रिंग मी बैड न्यूज दे स्ट्रेंथन्स मी एंड गुड न्यूज दे वीकन मी. तो ये सारी परिस्थितियां, घटनाएं, समस्याएं, जो कुछ है आने दो, जितनी आनी है आने दो, हम डरेंगे नहीं उससे. जितनी आए उतने ही और शक्तिशाली होते जाएंगे. तो परिस्थितियां भी क्या है, एक मौज बन जाएगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी हमको. नेक्स्ट है कार्मिक अकाउंट्स. किसी ना किसी आत्मा के साथ बड़े गहरे हिसाब है. सब कुछ कर लो फिर भी ठीक नहीं होता है. कोई ना कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है. पता नहीं आत्माओं को कभी कभी लगता है सब कर लिया हमने, सब कर लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं छोड़ा. पति पत्नी का ही उदाहरण ले लो. बेचारा पति सब प्रयत्न करता है उसको खुश करने का, पर वो कभी खुशी नहीं होती. फोन आया उठाया तो प्रॉब्लम, नहीं उठाया तो प्रॉब्लम, SMS आया उत्तर दो तो प्रॉब्लम, नहीं उत्तर दो तो प्रॉब्लम. जो कुछ कहो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं सामने वाला. हमने कहा कुछ, उसने लिया कुछ, हर बात में शक. कभी ठीक ही नहीं हो पाता. ऐसा गहरा हिसाब है दो व्यक्तियों का. ये तो एक उदाहरण दिया. ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, भाई भाई के हो सकते, भाई बहन के हो सकते, माँ बाप और हमारे हो सकते, बच्चों के हो सकते, या और किसी के हो सकते, या सेवा केंद्र के हो सकते, बहन भाई, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, कोई भी. बहुत कड़े हिसाब है. यहां पर काम विकार की बातें नहीं है, या कड़े हिसाब की बात है. डाउटिंग नेचर. जैसे एक पत्नी थी, हमेशा अपने पति के ऊपर शक करती थी. जैसे आता था उसके कोट को चेक करती थी, हाँ ठीक है या नहीं है. और उसको कोई ना कोई एक बाल मिल ही जाता था लंबा वाला. वो कहती ये बाल किसका है, जरूर कुछ गड़बड़ किया तुमने. रोज उसको दिखाती थी ये आज मिल गया. एक दिन वो आता है और वो ढूंढती, एक भी बाल नहीं मिलता है. तो वो कहती है नाउ यू हैव स्टार्ट मूविंग अराउंड विथ बाल्ड वुमेन. अच्छा तो तुम अब जो गंजी स्त्रियां है उनके साथ घूम रहे हो. घूमना तो निश्चित ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है. शक अपनी जगह पर कायम है. क्या करें, कोई उसका उत्तर ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है. ऐसे कुछ कुछ बड़े कड़े हिसाब है जिसके लिए सब कुछ कर लिया पर ठीक ही नहीं होते. नया नया निकलते रहता है हर दिन. ऐसे समय में भी वो मौज बन जाए, उसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है. सबसे पहले तो बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए अप्लाई करने के लिए. कौन सी ज्ञान की पॉइंट अप्लाई करें इस पर्टिकुलर आत्मा के लिए, क्या करे, किस प्रकार का योग करे और कैसे साक्षी रहे. न्यूट्रलाइज कर दे अकाउंट्स को. नया अकाउंट हमको क्रिएट नहीं करना है. बहुत जो क्रिएट कर लिया पर यह भी हमारे लिए मौज बन जाए. और वो मौज तभी बनेगी जब सुबह ठीक होगा, मनन चिंतन होगा, दिनचर्या ठीक होगी और पवित्रता ठीक रहेगी. जब ब्रह्मचर्य ही भंग हो रहा है तो एकाग्रता भंग, और एकाग्रता भंग तो सोच नहीं पाते इसके साथ करना क्या है. परिस्थिति के साथ, परिस्थितियों का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है एकाग्रता की. सारा कुछ देख सके, टू कनेक्ट द डॉट्स. अच्छा ये हो रहा है, 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 अभी ये करना है. ये पता भी तब चलेगा जब बुद्धि एकाग्र होगी. और एकाग्रता का स्रोत है ब्रह्मचर्य. द इजियर द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कंट्रोल. मन वश में क्यों नहीं है, क्योंकि अपवित्र है. पवित्र बनाओ तो अपने आप वश में आएगा. द प्योरर द माइंड the easier it is to control. So, कार्मिक अकाउंट्स ये सेटल करना भी मौज हो जाए, दुख ना लगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों आया, ये दुख नहीं होना है, बहुत अच्छा है, खुश हो जाओ, सब हिसाब किताब फटाफट फटाफट चुकतू हो रहे। लास्ट संडे की मुरली थी ना भोपाल पर, इतने लोग मर गए बाबा क्यों कैसे, भोपाल गैस स्टडी जी, भोपाल गैस का जो कांड हुआ था ट्रेजिडी 3 दिसंबर 84 में आधी रात को गैस लीक हो गई, MIC पूरा के पूरे शहर में फैल गई, कितने लोग मर गए, 5 लाख 5.5 लाख लोग प्रभावित हो गए, 10,000 तो तुरंत मर गए। 3 तारीख को यह हुआ, 10 तारीख को मुरली चली लास्ट संडे की, और कल चलेगी 12 तारीख उसी से संबंधित, 12 तारीख की 12 दिसंबर 1984 की। बाबा को पूछा गया, बाबा ने कहा अच्छा हुआ सबके हिसाब किताब चुकतू हो गए आत्माएं, नहीं तो दूसरे जन्म में आगे जाती थी, ये भगवान का उत्तर था। सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, हिसाब किताब की मशीनरी तीव्र हो गई है, अच्छा ही हुआ। तो जो कुछ हो रहा है इस ड्रामा में खेल है, हम क्यों डिस्टर्ब हो, जो हिसाब किताब भी हो रहे होने दो, उनको न्यूट्रल हो जाओ, अपने आप चुकतू होंगे। बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसलिए चुकतू नहीं हो रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं इसलिए चुकतू नहीं हो रही, कुछ भी करना बंद कर दो तो चुकतू होंगे। द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट डूइंग, द सॉल्यूशन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ये उत्तर है। कर रहे यही समस्या है कि इसको मैं ठीक करता हूं, कुछ भी मत करो, शांत हो जाओ, अपने आप ठीक होगा वो। जैसे एक दारू पी के व्यक्ति आता है, बहुत दारू पी, कहता है मेरा घर कहाँ है, अपने घर के पास आता है, कहता है मेरी माँ कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है, अरे यही तेरा घर है, मैं तेरी माँ हूं। तुम हट, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। सब लोग समझाते, उतना पिया हुआ है, वो कहता है मुझे घर जाना है कैसे भी करके। अरे कहते यही तुम्हारा घर है। फिर उसका एक दोस्त आता है बैलगाड़ी लेकर, वो भी पिया हुआ है, वो कहता है चल मैं तुम्हें घर के पास लेके चलता हूं, उसको बिठा के ले जाता है, जितना जाएगा उतना घर से दूर जाएगा। कहीं जाओ ही नहीं, यहीं रहो, यहां जाने से ही तो प्रॉब्लम हुआ है। मास्टरली इनएक्टिविटी मेडिकल फील्ड में कहते हैं, मास्टरली इनएक्टिविटी, कुछ भी मत करो, बहुत कर लिया, सोचते चलो एक बार अभी मिल लेते हैं फिर डिस्कशन करते हैं, जब डिस्कशन करने गए नया झगड़ा हो गया, गए किस लिए थे, सॉल्व करने के लिए, पर डिस्कशन करते करते नया झगड़ा खड़ा हो गया। ऐसे एक नहीं कई डिस्कशन हो चुके हैं, हर बार गड़बड़ी हुई है। बेस्ट अभी कुछ भी मत करो, शांति से बैठ जाओ बस, और न्यूट्रलाइज हो जाने दो हिसाब किताब, तो हिसाब किताब भी मौज बन जाएंगी। और सातवां सेवा, ब्राह्मण कुमार जीवन अर्थात हार्ड सेवा करनी है, ताकि शरीर रात में थक जाए और सो जाओ, फिर शरीर के सुखों की याद ना आए, कुछ और करो। हार्ड वर्क, बिजी कर देना है अपने आप को, GYDS ज्ञान योग धारणा सेवा, कुछ ना कुछ करते रहना है, मुरली का मनन करो, चिंतन करो, योग करो, छोटे छोटे प्रयोग करो, सेवा करो, यहां सेवा नहीं है तो कहीं और सेवा करो, कुछ समाज सेवा करो, कुछ भी करो, अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ कोर्सेज ज्वाइन करो, ऑनलाइन कोर्सेज, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, कुछ भी, पर अपने आप को बिजी कर देना। ऐसा नहीं होगा कि 6 घंटे हमारे एकदम खाली है, क्योंकि उसी 6 घंटे में माया आएगी। क्रिएटिव लर्निंग, नए नए कोर्सेस नेट पर जाओ ढूंढो, ऑनलाइन कोर्सेस जो बैठे हैं कुछ ना कुछ करे उसमें से, कोई तो वैल्यू एजुकेशन, कुछ भी, क्रिएटिव राइटिंग, कुछ भी, नए कोर्सेस, ऐसे स्किल्स अपने आप में डेवलप करनी है जो यज्ञ में काम आए। टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग ज्वाइन कर लो, 1 घंटा खाली है रोज जाओ, टाइपिंग सीख लो, बहुत काम आएगा। ड्राइविंग, कुछ भी जो यज्ञ में आगे काम है, अपने आप को तैयार करना है, सर्वगुण संपन्न, सारे गुण, खाली नहीं बैठना है, क्योंकि खाली बैठने का सबसे बड़ा दोष है खालीपन में विकारों का आकर्षण होता है। एकांत में कमरे में कुमार बैठा हुआ है, दो घंटा मुरली पढ़ता है, एक घंटा योग करता है, बाद में क्या, कुछ खाएगा, कुछ टोली करेगा, और आगे क्या, फिर कुछ ना कुछ तो देखेगा, और जो देखेगा वही करने की इच्छा होगी, और है नहीं कोई साथ में, खुद ही कल्पना में सुख का अनुभव करेगा और फिर नीचे गिरेगा, फिर दूसरे दिन उठ के पश्चाताप, फिर से वही दिनचर्या, ज्ञान योग सेवा, और फिर वही खालीपन खतरनाक है, अकेलापन, उसमें बहुत आकर्षण होता है विकारों का। इसके लिए बिजी कर दो स्वयं को, सुबह से लेकर रात तक बिजी, कहीं फ्री टाइम ही नहीं है कि बैठ के गपशप करूं, अच्छा ये है क्या, अच्छा वो है, अच्छा इसने क्या किया, उसने क्या किया, क्यों, सारी मुरलियां पढ़ के हो गई 69 से अब तक की, जो हम कहते हैं हमारे पास टाइम बहुत है, आज तो मेरा संडे है, संडे तो सबसे ज्यादा बिजी होना चाहिए, इतनी अव्यक्त वाणियां पढ़ने बाकी है, सारा ज्ञानामृत हो गया पढ़ के इस मास का, प्यूरिटी वर्ल्ड रिन्यूअल लिटरेचर यज्ञ की किताबें सारी पढ़ के हो गई, जो शांति से बैठे कि मेरे पास टाइम बहुत है, अरे वो छोड़ो आज सुबह की मुरली ले लो, उसका रिवीजन हो गया क्या, वो तो बहुत दूर की बात है, बाकी सब यही नहीं हुआ, और फिर कंप्लेंट करते हैं हमारा ऐसा हुआ, कितने कुमारों के फोन आते हैं, मेरे से ऐसी गलती हो गई कि मैं किसी को कहने के लायक नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि अब मैं बाबा से डर लगता है मुझे, मैंने ऐसी गलती कर दिया अब सोचता हूं ये ज्ञान ही छोड़ दूं, मैंने ऐसी गलती कर दिया कि बहनों को भी नहीं बता सकता, मैं सेवा केंद्र में ही रहता हूं पर उनके प्रति मेरे विकार के संकल्प में मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे फोन आते हैं खतरनाक, क्यों, लंबे लंबे मैसेजेस, इतना लंबा कि पढ़ते भी नहीं हूं उसको, इतने लंबे क्योंकि पता है क्या लिखा है, जब भी कहता है कोई मुझे अकेले में बात करनी है, क्या बात करनी है वो पहले ही पता है, यह ऐसी बात करनी है आप किसी को बताना मत, 6 पेजेस का लेटर जेब में डाल देते भाई जी बाद में पढ़ना, और उसमें मेरा नंबर और एड्रेस लिखा है, कुछ तो बताना, इतना खुफिया गुप्त रूप से जितना होगा, अर्थात एक ही प्रॉब्लम है और दूसरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जो इस तरह बताया जाता है, एकांत में बात करनी है आपसे, यही बात करनी है, और क्या बात है, इसी पर काम करना है, इसी को जीतना है, यहीं पर अपने आप में शक्ति भरनी है, इस काम को जीत लिया बाकी सब आसान है, सब आसान, सारा फोकस इधर कर देना है। इसके लिए जो 3 किताबें बताई उसमें से जो पहली किताब बताई वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस ऑफ सेलिबसी, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है, पर और मनन करते हुए पढ़ना है, हिंदी की वहां से मंगानी पड़ेगी, इंग्लिश की तो तुरंत टाइप करते ही आ जाएगी फर्स्ट। थोड़ा सा पढ़ना सोचना, थोड़ा सा पढ़ना सोचना, अच्छा ये है क्या करें, क्या किया जाए, क्योंकि काम कोई आज की समस्या नहीं है, द्वापर से चालू हो गया है, और सबने प्रयत्न किया है, ऋषि मुनि योगी तपस्वी सबने कुछ ना कुछ तो किया ही है, बाबा ने लास्ट में आके फाइनल बताया वो दूसरी बात है, वो उसके पहले सभी ने प्रयत्न किया है, बहुत प्रयत्न किया है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, और बहुत सारे सफल भी हुए हैं। तो ये 7 बातें हैं, पहली बताई अमृत वेला, फिर बताया मुरली, चिंतन, भोजन, योग युक्त, चौथा मायाचित, 5वां परिस्थितियों में अचल अडोल, छठवां हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट्स और लास्ट सेवाएं, ये सातों की सातों चीजों को मौज बना देना है। इसी में कुमार जीवन में का अर्थ छिपा हुआ है, इसी में शक्ति है, बाकी तो व्यर्थ ही व्यर्थ है संसार में। तो इस भक्ति से, इस क्लास से और यहां आने के बाद जो कुछ बातें सुनी, यहां से जाने के बाद थोड़ा उस पर चिंतन करना है। जो लिखी है उसको फिर से रिवाइज करना है, जो नहीं लिखी है उसको याद करने की कोशिश करना है, और कल सारा दिन फिर से भट्टी है भाई बहनों की, उसमें भी अंतर्मुखी होके जो बातें सुनेंगे अपने आप को चेकिंग करना है कि मेरे अंदर क्या क्या रह गया है, मैं क्या करूं। तो कल सारा दिन रविवार मौन जितना हो सके, अंतर्मुखता और संगठित ये सोचना है कि ये पूरी आत्माएं यहां जो आएगी कल, इन सब की संगठित ऊर्जा के बीच में मैं कुछ ऐसा संकल्प करूंगा बाबा के सामने कि वो पूर्ण होना ही है। अब गलती नहीं हो सकती, बहुत गलतियां कर ली, बहुत पश्चाताप कर लिया, बहुत माफियां मांग ली, बहुत खत लिख लिए, बहुत हो गया, स्टॉप इट नाउ। अब सीधा काम करना है, एक्शन स्ट्रेट, और अब गिरेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। अगर गिर भी गए तो तुरंत उठेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट, किसी को कोई प्रश्न होगा तो एक हाथ दो प्रश्न पूछ सकते, माइक दे दीजिए, माइक प्रश्न उत्तर दीदी, किसी को भी कोई भी प्रश्न, इस क्लास से संबंधित या कोई भी बाहर का, उधर दे दीजिए
भाई जी। मैंने आपकी एक क्लास सुनी थी जिसमें आपने बताया था कि वो एक कीड़ा होता है जो बहुत शास्त्र पढ़ता है जाके, और फिर वो सोचता है कि मैं उड़ ही नहीं सकता, फिर फाइनली जब वो चिड़िया हमला, तो आपने बोला था कि इतना ज्यादा मतलब इन चीजों को भी नहीं पढ़ना चाहिए कि वही हमारे लिए मुसीबत हो जाए, और अभी आपने बोला जैसे लिटरेचर वगैरह पढ़नी चाहिए, तो मतलब क्या करना है कि पढ़ना है?
वो जो बात कही थी वो एक दूसरे प्रकार की बात थी, ये जो बात कह रहे हैं ये ज्ञान की बात है। उसमें उसने ये पढ़ा कि उड़ना कैसे, और उसने जो कुछ पढ़ा उसमें उसको पता चला ये तो मुझ में है ही नहीं, इसका मतलब मैं उड़ ही नहीं सकता। उसने उल्टे तरीके से ज्ञान ले लिया, पूरा उल्टा ज्ञान ले लिया कि मैं तो उड़ ही नहीं सकता, और ये बात उसके अंदर इतनी जहन में बैठ गई कि मैं उड़ नहीं सकता, क्योंकि किताब में लिखा है कि मेरे जैसा प्राणी ऐसे पंख वाला और इतने साइज के पंख वाला कभी उड़ नहीं सकता, और वो अंदर चली गई, और जब एकदम संकट आया तो उड़ने लगा। तो हमारे पास विवेक है, हम बुद्धू नहीं है कि अगर किसी ने कहा, संसार वालों ने कह दिया ये पवित्रता असंभव है, कभी एक साथ नहीं रह सकते आंख और कपास, अगर किसी ने ये पढ़ लिया और अंदर डाल दी तो वो हो जाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। जब भी कोई चीज पढ़े एक बात याद रखनी है, Do not believe in anything because you have read it somewhere. Do not believe in anything because it is written in the scriptures. Do not believe anything because it is said by some great person. Do not believe anything because it has been hallowed by tradition. Find out the truth yourself. उसका सार ये है कि हम पढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ मान ले जो लिखा हुआ है, हम कुछ सुन ले किसी से, इसका मतलब ये नहीं कि सभी सही है। आपने अभी जो एक घंटे में जो कुछ सुना, डेढ़ घंटे में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सब रिजेक्ट कर दो, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, खुद एक्सपेरिमेंट करो और फाइंड द ट्रुथ। ऐसा नहीं क्योंकि परंपरा से कोई चल रहा है सत्य ऐसा 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 है तो हम मान ले, किसी ने कह दिया है या किसी दादी ने भी कह दिया, बाबा ने भी कह दिया, किसी ने भी कह दिया, जरूरी है कि हम सब मान ले, सत्य को ढूंढो। मैथमेटिक्स का रूल क्या है, ए इज इक्वल टू बी, कैसे जाते हैं वो शुरू में, ए इज नॉट इक्वल टू बी, हाइपोथेसिस, और फिर प्रूव करते जाते 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 रात में लास्ट में कंक्लूजन आता है नहीं 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 ए इज इक्वल टू बी। ये विधि है। वो जो बात कही थी वो है तर्क की, यहां अपनी तर्क बुद्धि प्रयोग करनी है। जैसे कोई मुरली उठा ले और उसमें से कोई एक वाक्य ले ले, गीता ले लेते हैं लोग और टेररिस्ट भी गीता कोट करता है, जो आतंकवादी है वो भी कहता है देखो गीता में ही लिखा है ना मारो, मैं भी तो वही कर रहा हूं। दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तो वो है यूज योर ओन लॉजिक, उसके लिए है। पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, स्वाध्याय तो हमारे जो यज्ञ की दिनचर्या है उसमें दोपहर का जो टाइम है आपके पास वो लेटर ये होगा यज्ञ की, अगर किसी के पास डायरी है उसमें होगा दिनचर्या लिखी हुई। एक चीज है सेल्फ स्टडी, हिंदी में उसको कहते हैं स्वाध्याय, अध्ययन। मुरली भी जो पढ़ रहे, मुरली सामने, भगवान ने एक वाक्य कह दिया इस संसार से तुम्हें नफरत आनी चाहिए, मानना थोड़ी ना है। क्यों, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, वाय, वॉट, वेयर, वाय एंड हाउ, ये सारे प्रश्न आने चाहिए। तो ये सब है एनालिटिकल थिंकिंग, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग अर्थात कोई भी चीज का विश्लेषण करना, इस कला को सीखना है, उसके लिए वो कहानी है। वो पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, परंतु क्या लेना है? अगर कुछ हम पढ़े और उसमें कुछ लिखा है और हम उसको मान ले, ये तो मूर्खता हो गई। बुद्धू की तरह नहीं पढ़ना है, इंटेलिजेंट। बाबा कहते हैं विवेक क्या कहता है, हमेशा मुरली में आता है विवेक कहता है, विवेक कहता है, विवेक कहता है, विवेक का प्रयोग करना है, विजडम एनालिसिस। अच्छा, और कोई प्रश्न? एनी प्रश्न, एनी क्वेश्चन? सभी प्रश्नों से पार? ठीक है, ओके, ओम शांति।